ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय विभूतियों पंडित मदन मोहन मालवीय, महर्षि दयानंद सरस्वती और विनायक दामोदर सावरकर के सम्मान में दिल्ली विधानसभा परिसर में उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिए 30,000 रूपये की सब्सिडी मंजूर की। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि कल शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर आवारा गायों की रोकथाम के लिए शहर के गौशालाओं और डेयरी मालिकों के साथ बैठक की। और आईपीएल T20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय विभूतियों पंडित मदन मोहन मालवीय, महर्षि दयानंद सरस्वती और विनायक दामोदर सावरकर के सम्मान में दिल्ली विधानसभा परिसर में उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आज विधानसभा की सामान्य प्रायोजन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। एक रिपोर्ट।
विधानसभा कार्यालय ने बताया कि ये निर्णय इन महान विभूतियों के देश के स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार और शैक्षणिक जागरण में दिए गए अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यालय ने बताया कि ये पहल न केवल उनके प्रेरणादायी विचारों और कार्य को चिरस्थायी बनाने की दिशा में है, बल्कि ये विधानसभा की उस परंपरा का भी अनुसरण है जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें विधानसभा परिसर में स्थापित की गई हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिए 30,000 रूपये की सब्सिडी मंजूर की है। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये निर्णय प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 78,000 रूपए की सब्सिडी का पूरक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धूल नियंत्रण योजना का भी शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सर्दियों से पहले 210 जल छिड़काव यंत्र के साथ एकीकृत 70 MRC मशीन, स्मॉग रोधी गन, 18 डंप वाहन और 18 जल टैंकरों की तैनाती की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का नाम लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति योजना करने के शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ वायु और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक मुक्त सार्वजनिक स्थल अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का आयोजन दिल्ली नगर निगम ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खेल और युवा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के सहयोग से किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने रेखांकित किया कि दिल्ली प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक कचरा उत्पन्न करती है, जिसमें लगभग 1,100 टन प्लास्टिक शामिल है। उन्होंने बताया कि यह प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई की केवल शुरुआत है। श्री गुप्ता ने देश के युवाओं, नागरिकों, RWA और NGO से इस संघर्ष में एकजुट होकर भाग लेने की अपील की। वहीं MCD आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि एक स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक सामूहिक लक्ष्य है। उन्होंने युवाओं की भागीदारी और नीतिगत सहयोग पर बल देते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम इसी सामूहिक भावना का प्रमाण है। कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर राजा इकबाल, उप महापौर जय भगवान यादव और उप कुलपति डॉ. प्रतीक शर्मा सहित MCD के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजधानी की सड़कों पर आवारा गायों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने आज शहर के गौशालाओं और डेयरी मालिकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विषयों पर उनके साथ चर्चा की। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार ने लोगों से झूठे वादे किए, जिसके कारण आज सभी डेयरियों की हालत बहुत बुरी है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास पीने का पानी, गोबर गैस प्लांट और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली की सड़कों पर आवारा पशु दिखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेगी।
आज भी वर्षों बाद वहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उन डेयरियों में ना कोई गोबर गैस प्लांट है, ना कोई नालियां है, ना कोई सीवेज है, ना कोई वहाँ पे सफाई व्यवस्था है। सड़कों पे गौ माता ना घूमे, उनको यथास्थान स्थापित किया जाए, डेयरियों को सुविधाएं मिले, गोवंश की तरक्की हो और पूरी दिल्ली में और भी अधिक गौशालाओं का निर्माण हो, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास रहेगा।
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि राजधानी में अब तक कुल 500 में से 494 कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सीएनजी पंपों और ईंधन स्टेशनों पर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी कैमरे 1 जुलाई से पहले लगा दिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के सशस्त्र बलों के पराक्रम, बहादुरी और वीरता के सम्मान में दिल्ली सहित पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शहर के तालकटोरा स्टेडियम से कर्तव्य पथ पर आज खालसा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद सहित अन्य नेता शामिल हुए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये रैली भारत के वीर जवानों के साहसिक गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि आज की यह खालसा तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश के सिख समाज का प्रत्येक व्यक्ति मातृभूमि पर मर मिटने के लिए तैयार है।
देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकजुटता के लिए हमेशा हमारा खालसा पंथ आगे रहा है और आज की ये तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश का, सिख समाज का हर एक व्यक्ति इस मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, देश की सेनाओं के साथ है।
वहीं श्री सिरसा ने कहा कि भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया है वो लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि आज सभी सिख समुदाय के लोगों ने सेना की शान में ये रैली निकाली है।
देशभक्ति खून में आती है। जिस मिट्टी के लिए आप मरे होते हो, जिस मिट्टी के लिए आपने जान दी होती है, उनमें देशभक्ति की बात आती है। ये खालसा देश के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है, ये देशभक्ति है।
सीमा पार जल मुद्दे पर जाने माने टिप्पणीकार उत्तम कुमार सिन्हा ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित रखने के भारत के निर्णय को सोच समझकर उठाया गया कूटनीतिक कदम बताया है। श्री सिन्हा ने कहा कि भारत इस आशा के साथ अपने फैसले पर कायम रहेगा कि पाकिस्तान अपने व्यवहार में सुधार करेगा और भविष्य में सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कल शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण नई दिल्ली स्थित WHO परिसर के पास पानी की पाइपलाइन बाधित रहेगी। इसके कारण राजघाट, वजीराबाद, स्टाफ क्वार्टर, सिग्नेचर ब्रिज, LNJP अस्पताल, WHO, IP इमरजेंसी, JJ क्लस्टर, भैरव रोड, चिड़ियाघर, ग्रेटर कैलाश और आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर हैं 011-2923-746 और 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर को मंगाया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस वर्ष कुल 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में ऑनलाइन कम्प्यूटरकृत ड्रॉ के माध्यम से तीर्थयात्रियों का चयन किया गया। एक रिपोर्ट।
तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 30 जून को रवाना होगा। अंतिम जत्था इस वर्ष 25 अगस्त को यात्रा समाप्त करेगा। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50 तीर्थयात्रियों के कुल 15 जत्थे रवाना होंगे। 15 जत्थों में से 5 लिपुलेख मार्ग से और 10 नाथुला मार्ग से जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तीर्थ यात्रियों को एक सुचारू और सुरक्षित अनुभव प्रदान करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
चाहे लिपु लेक की बात करें, चाहे नाथुला की बात करें, अब मोटर वाहन जा सकते हैं। हर बैच के साथ आपके दो संपर्क अधिकारी होंगे। आप लोगों को अगर कोई सहायता की जरूरत हो, सो दे आर वेल ट्रेन्ड स्टाफ। इट इज अ ड्यूटी कि हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनकी सुरक्षा रहे, उनकी यात्रा आसान है, अच्छी रहे, हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ आदर्श।
केंद्र ने अग्रिम टिप मामले में कैब संचालक उबर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अग्रिम टिप देने की प्रथा बेहद चिंताजनक है और ये अनुचित व्यापार प्रथा है। इस प्रथा का संज्ञान लेते हुए श्री जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से इस पर गौर करने को कहा है। प्राधिकरण ने इस संबंध में उबर को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद कल शकुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर श्री सूद सरस्वती विहार स्थित सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय और रानीबाग स्थित राजकीय उच्चतर सह शिक्षा विद्यालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज चावड़ी बाजार स्थित लोहा भवन में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये शिविर हर नागरिक तक सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में देहात के गांवों के लिए लगभग 3.25 करोड़ रूपये के विकास योजनाओं की शुरूआत की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के संगीत कार्यक्रम नमो भारत अनप्लग्ड म्यूजिकल फ्राइडे की शुरुआत इस शुक्रवार से आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर होगी। नमो भारत के यात्री और अन्य संगीत प्रेमी अब हर शुक्रवार शाम 6 बजे स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर उभरते हुए कलाकारों द्वारा लाइव संगीत प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी समाधि स्थल वीरभूमि में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश के विभिन्न इलाकों में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। महात्मा गांधी के जीवन विचारों तथा मूल्यों से स्कूली छात्रों को अवगत कराने के लिए राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में आज से एक सप्ताह की ग्रीष्मकालीन पाठशाला की शुरुआत हुई। कक्षा 7 से 11 तक के छात्रों के लिए इस विशेष पाठशाला में बच्चों को महात्मा गांधी के आदर्शों को समझने और आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने बताया कि संवाद गतिविधियों और रचनात्मक अभ्यासों के माध्यम से छात्र जानेंगे कि कैसे गांधी जी के सिद्धांत आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली गेम्स 2025 जारी हैं। इन खेलों में 12,000 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली गेम्स में शहर के 25 से अधिक आयोजन स्थलों पर 40 से अधिक खेलों में एथलीट स्पर्धाएं हो रही हैं। इन खेलों का आयोजन दिल्ली ओलंपिक संघ द्वारा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन खेलों को प्रायोजित किया जा रहा है। IPL T20 क्रिकेट में आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 46 रन बना लिए हैं। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये मुकाबला दोनों टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की राह तैयार करेगा। इसमें जीत के साथ ही मुंबई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं अगर दिल्ली इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक और मौका मिलेगा। दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप होने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय विभूतियों पंडित मदन मोहन मालवीय, महर्षि दयानंद सरस्वती और विनायक दामोदर सावरकर के सम्मान में दिल्ली विधानसभा परिसर में उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिए 30,000 रूपये की सब्सिडी की मंजूरी दी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कल शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।